रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई है। एक सौ उनतालीस पेज। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि यहाँ स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवान वार। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वो है बेहद का फादर। इस सारी सृष्टि का रचने वाला गॉड फादर। लौकिक बच्चों को ही फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। ये है बेहद का पार लौकिक बाबा। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है। हर एक को अपने बच्चे होते हैं तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए। तकदीर बनाकर आए हैं कहाँ से? तकदीर बना करके ही आए हैं, फिर यहाँ पुरुषार्थ क्या करना है? तकदीर तो बन चुकी, फिर कहाँ से तकदीर बना के आए हैं? ये भी के आदि से ये भी बात अच्छी है। अच्छा, जो यज्ञ के आदि में नहीं थे, बूढ़े बूढ़े भाई बहन है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तकदीर बना के नहीं आए हैं क्या? जोर से बोल। लोगों की दुनिया को छोड़ने से मतलब थोड़े ही है। तकदीर बनाकर कहाँ से आए? लौकिक बाप से तो तकदीर बना के नहीं आए, कहाँ से तकदीर बना के आए? तकदीर जगा कर आई हूँ कल्प पहले से, तो पूर्व जन्मों की प्रारब्ध से, पूर्व जन्मों का जो किया हुआ सुकृत है उसके आधार पर हर आत्मा अपनी अपनी तकदीर जगा कर आई है। इसलिए बताया तुम यहाँ तकदीर बना कर आए। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, सबको नहीं। तुम ऐसी पूर्व जन्मों की सुकृत है, कोई अच्छी करनी करके आए हो कि तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। सबको मनुष्य से देवता नहीं बनाया जाता। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने से पुराना खंड है। पांच मुख्य खंड हैं। कौन कौन से पांच मुख्य खंड हैं? भारत खंड पुराने से पुराना हो गया। बाकी क्रिश्चियन खंड, इस्लामी खंड, बौद्धी खंड और है शंकराचार्य का खंड थोड़ी कोई, वो तो भारत खंड के ही है। नास्तिक रशिया, वो भी क्रिश्चियन से जैसे अलग ही है। तो नास्तिक खंड और है आर्य समाज कोई खंड थोड़े। खंड माने जमीन का भाग, भूभाग जहाँ धर्म फैलता है। कौन कौन से? भारत खंड, इस्लामी खंड, बौद्ध खंड चीन जापान, क्रिश्चियन खंड और रशिया। तो ये पांच मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था, देवी देवताएं पवित्र थी। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था, अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है, स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है, इतना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगा कर आए मनुष्य से देवता बनने के लिए, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं, क्या मनुष्य से देवता? मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते बेहद के बाप के सिवाय। पति से मनुष्य किसको पावन नहीं बना सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पति का पावन आओ, क्योंकि वहां तो सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना ये बाप का ही काम है। इस समय भारत बिल्कुल वैश्यालय बन गया, पहले शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है, उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। तो परमात्मा जो सबका बाप है वो याद करके सबको दुख से छुड़ाते हैं। कब? जब उनकी जयंती मनाई जाती है। तो कारण क्या है जयंती मनाने का? कोई भी बड़े आदमी का जन्म दिवस मनाया जाता है तो यादगार कायम करने के लिए मनाया जाता है ना। कोई बड़ा काम किया है तो उसका जन्म दिवस मनाया जाता है। और भारत में ही जयंती मनाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए, शांति दाता सुखदाता वो एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था, प्योरिटी भी तो प्रॉस्पेरिटी भी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं है। ऊंचे से ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। तो फिर से भारत को नया बापी बनाते। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न सब में ईश्वर होता है, क्योंकि सब में तो पांच शैतान होते हैं। इन पांच विकारों को मिलाकर के रावण कहा जाता है। और इस समय रावण का राज्य है, सभी विकारी पतित हैं। पति में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी, और भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामानुसार फिर भारत पुराना बना है, नई शक्ति तो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक ही राज्य था, वह लालमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाप, और करता है माताओं के द्वारा। क्या स्थापन करता है? स्वर्ग। जब शक्ति सेना माताएं हैं ना, केवल सच्ची सेना माताएं हैं, माताएं सड़क का द्वार खोलती हैं, पिताएं क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि पुरुष तन स्वभाव संस्कार से ही ऐसा होता है। इस काम विकार के मामले में अपने में कंट्रोल नहीं होता, कुछ न कुछ लीकेज जरूर होती है। तो शक्ति सेना माताएं गई हुई, जगदम्बा भी गई हुई है, घी क्यों लगाया? कि शक्ति सेना में ढेर माताएं हैं। कितनी माताएं हैं? कम से कम कितनी शक्तियों का गायन है जिनकी पूजा होती है? नौ देवियां, नौ दुर्गा, तो उनमें जगदम्बा भी गाई हुई है। मन से नहीं जानते कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचे ऊंचे है परम पिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पायत है? वो आकर के भारत को पतित से पावन बनाते हैं। आकर के बनाते हैं, ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ाई के चले जाएं फिर अपने आप पति से पावन बनते रहें। आकर के भारत को पति से पावन बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, शरीर ही चला गया तो मीडिया तो गया, तो ब्रह्मा द्वारा कैसे कहेंगे नई दुनिया की स्थापना, पावन दुनिया की स्थापना? सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा द्वारा क्या? सूक्ष्म वतन तो ऊपर बताया है और पावन दुनिया तो इस सृष्टि पर स्थापन होनी है, और स्थापन करने वाला मीडिया भी साकारी होना चाहिए। तो अब ये पहेली हल कैसे होगी तो ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं? कौन से ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना होती है? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो दादा लेखराज का भी टाइटल था। तो बताया चतुर्भुजी ब्रह्मा जिसके चित्र बनते हैं, चित्र बनते हैं संपूर्ण के, अपूर्ण के चित्र उतने नहीं बनते। तो चार भुजा का ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? चार आत्माएं सहयोगी के रूप में, सहयोगी भुजा के रूप में चार आत्माएं, तो उनको चतुर्भुजी ब्रह्मा कहो या चतुर्भुज विष्णु कहो, बात एक ही हो जाती है। तो ब्रह्मा और सरस्वती, दादा लेखराज और ओम राधे, ये दो आत्माएं, दो भुजाएं जब अपना साकार शरीर छोड़ती है तो उसके बाद कोई दो ब्राह्मण बच्चे हैं जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है, जगत पिता और जगदम्बा। तो इन्हीं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन वो चतुर्भुजी ब्रह्मा कहा जाता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे, हे बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन, भारत को पवित्र बनाए फिर राजी करेंगे। पवित्र बनेंगे श्रीमत पर और खुद पवित्र बन के भारत को पवित्र बनाएंगे। केवल शक्तियों का ये अंजाम है शिव बाबा से। पहले हम क्या करेंगे, पहले खुद पवित्र बनेंगे, भारत को पवित्र बनाएंगे और फिर पवित्र भारत पर राज्य करेंगे। इसलिए शेरनी शक्तियां गाई हुई है, बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती तो है नई दुनिया की, लेकिन ब्रह्मा द्वारा कराने वाला भी कौन? शिव बाप। ऐसे नहीं कि वो ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा देता रहता है, नहीं, वो खुद आता है प्रैक्टिकल में, आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, सबका बाप। सबका मन जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, सबका बाप है, सबका बाप और थोड़ों का बाप, ये कैसे कहा जाए? कथा कथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादा लेखराज को सबका बाप कहती है, तो वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप नहीं है क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, उसको फादर कैसे कहा जा सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। कोई को तो क्लोज कॉन्टेक्ट में आकर के मिलेंगे, सर्व संबंधों से मिलते हैं प्रैक्टिकल में, कोई को संपर्क मात्र से मिलते हैं, कोई को दृष्टि मात्र से मिलते हैं, कोई को सिर्फ सुनने मात्र मिलते हैं, क्योंकि इंद्रियों से ही मिलन होता है। कोई ऐसी भी आत्मा है जो सिर्फ ट्रांजिस्टर में कानों से आवाज सुनेंगी और आंखों से टेलीविजन में चित्र देखेंगी तो वो भी मिलेंगी। उनका भी बुद्धि का लगा होगा उसी बाप के साथ, मतलब कि 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी, मनुष्य आत्मा, जिसका बाप से संबंध न जुटे। तो भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, जगदम्बा है सबकी माता, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, है सबकी माता। अब कोई माने या ना माने, विदेशी लोग गॉड मदर को नहीं मानते, तो वो विदेशी लोग जैसे गॉड मदर को नहीं मानते तो उन विदेशियों के जो आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे या बीज रूप आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में होंगी, क्या वो गॉड मदर को मानेंगी, उसको रिगार्ड देंगी? नहीं देंगी। जब तक कि धर्मराज के दंडों से उनका छिलका न उतर जाए। कौन सा छिलका? जो दूसरे धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है वो उतरना जरूरी। ऐसे ही जो आधारमूर्त जड़े हैं उनके ऊपर भी दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। तो भारतवासी गाते हैं, विदेशी नहीं गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, बाप स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं। बाप की कृपा कौन सी है? कोई कहते हैं बाबा हम पर रहम करो, कृपा करो, تو بابا کہتے ہیں کہ میں جو پڑھائی پڑھاتا ہوں یہی تمہارے اوپر کرپا ہے, یہی تمہارے اوپر رحم ہے, تم اس پڑھائی کو پڑھو. اس کرپا سے ہم بھوشیہ میں بہت سکھ دیکھیں گے. دوسرا دیکھ, یہاں تو اس دنیا میں بہت دکھ ہیں, اس لیے ان کو نرک کہا جاتا ہے. دیتی ورلڈ تو پھر دیوی ورلڈ بن جاتی ہے. دیتی ورلڈ میں دوسرا کوئی کھنڈ نہیں رہتا ہے. کیا روس, امریکہ, آسٹریلیا, بودھ دھرم کھنڈ, چین, جاپان, افریقہ وغیرہ, یہ نئی دنیا میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو آج میں تھے وہی انت تک رہیں گے. اوناشی کھنڈ بھارت ہی تھا اور بھارت ہی انت تک رہتا ہے. باقی جو دوسرے دھرم کھنڈ ہیں جیسے امریکہ ہے, 500 ورش پہلے منشی کی مشرق پٹل پر امریکہ کا نام نشان بھی نہیں تھا. کولمبس نے جا کر کے امریکہ کی کھوج کی تو وہاں پتا چلا کہ تھوڑے سے ریڈ انڈین تو وہاں رہے پڑے. وہ بھی کہاں سے پہنچے؟ وہ بھی بھارت سے ہی پہنچے تھے, انڈیا سے ہی. راستہ بھول گئے چلتے چلتے. تو سیدھے چل پڑے, امریکہ کے گھاٹ تک پہنچ گئے. خراب راستہ تو بھول گئے تو بہن کے وہیں بس گئے. تو امریکہ 500 ورش پہلے جیسے منشی کے مستق پٹل پر نہیں تھی. اس کا کارن کیا ہوا؟ کہ امریکہ واسطہ میں سمندر کے گرد میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسے ہی آسٹریلیا, آج سے 300 ورش پہلے آسٹریلیا کا نام نشان نہیں تھا منشیوں کی بدھی میں. 300 ورش کے اندر ہی آسٹریلیا کی ایجاد ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ دھرم کھنڈ جب وناش ہوتا ہے تو یہ وناشی دھرم اور وناشی دھرم کھنڈ سب لوپ ہو جاتے ہیں, سمندر کے گرت میں سمائے جاتے ہیں, ساگر انہیں اپنے پیٹ میں سمائے لیتا ہے. تو دوسرے کوئی کھنڈ ہے دیوی کھنڈ میں نہیں رہتے. دیوی کھنڈ میں صرف بھارت کھنڈ رہے گا. بےحد کا باپ ہی آ کر کے بچوں کو بےحد ورلڈ کی ہسٹری جاگرافی سمجھاتے. جو ہسٹری جاگرافی اور کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے. تم بےحد کے باپ سے پرتیجا کرتے ہو, اے بابا آپ آئے ہو بھارت کو سورگ بنانے. بابا کے آنے کا اہم آبجیکٹ کیا ہے؟ بھارت کو سورگ بنانے کا اہم آبجیکٹ ہے پرماتما کے سرشتی پر آنے کا اہم آبجیکٹ یہ ہوا. تو کیا پرماتما اہم آبجیکٹ پورا کیے بغیر چلا جائے گا؟ کیا آئے گا؟ تو پرماتما پہلے اپنے لکشیہ کو پورا کرتا ہے. اگر پرماتما ہی لکشیہ کو پورا نہ کرے اور بیچ میں واپس چلا جائے تو پھر بچے اپنے لکشیہ کو پورا کیسے کریں گے؟ بچے نر سے نارائن اور ناری جیسی لکشمی, وہ ناری سے لکشمی جیسے کیسے بنے گی؟ ہم شریمت پر چل بھارت کو سورگ اتوا شریشٹھ بنائے پھر ان پر راجی کریں گے. اس کو راجیوں کی شکشا کہا جاتا ہے. یہ کوئی ہٹیوں کی شکشا نہیں ہے. کسی پرکار کی ہٹ اس میں چل نہیں سکتی. ہٹ کی جاتی ہے زبردستی, اور سہج راجیوگ میں کوئی زبردستی نہیں. سہج سہج جیسے بچہ ماں کو یاد کرتا ہے, ماں بچے کو یاد کرتی ہے, سہج ہی بدھی چلی جاتی ہے. تو اس راج یوگ کی شکشا سے ہم بھارت کو شریشٹھ بنائے ان پر راج کریں گے. سنیاسیوں کا ہٹ یوگ ہوتا ہے, جو گھر گھاٹ چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہٹ کو پکڑ لیتے ہیں. پرماتما باپ کی سریمت کو نہیں پکڑیں گے. اہنکار میں آئے کہ اور اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں. تم کو تو کچھ بھی چھوڑنا ہی نہیں ہے, گھر بار بھی چھوڑنا نہیں, یہ تو پرانی دنیا کو صرف بھولنا ہے. تم اب نئی دنیا میں جانے والے ہو, باپ گائیڈ بن کر کے آئے ہیں. کہاں کے لیے؟ نئی دنیا سکھ دھام اور شانتی دھام کا گائیڈ بن کر کے آیا ہے. وہ ہے لبریٹر, سب کو دکھوں سے لبریٹ کرنے والا. شیو بابا کا بھارت ہے برتھ پلیس. سومناتھ کا مندر بھی یہاں ہے, یہ یادگار بنی ہوئی ہے. نام کیا رکھ دیا؟ سومناتھ. سوم مانا کیا؟ سوم رس کہتے ہیں. کہتے ہیں چندرما میں امرت بھرا ہوا ہے, شاستروں میں اسے لکھ دیا ہے. امرت رس ہے. تو سوم چندرما کو بھی کہا جاتا ہے اور امرت رس کو بھی چندرما کہا جاتا ہے. سوم کہا جاتا ہے تو سوم مانا چندرما. چندرما گیان کی بھاشا میں کون ہوا؟ جس نے چندرما کا پارٹ بجایا. چندرما کی روشنی میں کیڑے مکوڑے بھی پلتے ہیں گود میں, اور سوری کی روشنی میں کیڑے مکوڑے نہیں پل سکتے, تل ملاتے ہیں اور چھٹ پٹا کے خلاص ہو جاتے. تو چندرما ایسا ایسی گیان کی شیتل روشنی دیتا ہے جس میں کیڑے مکوڑے جیسی بچھو چنڈن جیسی آتمائیں بھی اس گود میں پیار سے پلتی رہتی. تو یہ رودر گیان یگ میں بڑے بڑے بچھو چنڈن مثل آتمائیں وہ بھی برہما سے برہما کی گود میں پالنا لیتی رہی, ان کا پیار پاتی رہی. تو وہ ہوا چندرما جو کیڑے مکوڑوں کو بھی شرن دیتا ہے. اور اس چندرما کا ناتھ, ناتھ مان سوامی. ناتھ میں نتھنیاں ڈالی جاتی ہے نا, بیل کو کیا ڈالی جاتی ہے؟ ناتھ. بیل سے جب کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہے تو اس کی ناک میں نکیل یعنی ناک ڈالی جاتی ہے. بھارت ورس میں بھی آج رواج ہے. کیا استری کو کیا کرتے ہیں؟ استری کی ناک چھیر دیتے ہیں, اس میں نتھنیاں ڈال دیتے ہیں. تو اس برہما, برہما نے بڑی اور ماں مانا ماں, اس بڑی اما کو بڑے بپا کیا کرتے ہیں؟ ناتھ دیتے ہیں. کائے کے لیے؟ نئی سستی رچنے کے لیے. ناتھا ہوا ہے. جیسے اس دنیا میں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے اپنا پریوار بڑھانے کے لیے, اپنی سستی رچنے کے لیے کیا کرتے ہیں باپ؟ سجنی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو بندھن میں باندھتے ہیں, اور بندھن میں باندھ کر کے پھر سستی کی رچنا کرتے ہیں. وہ ہے حد کی رچنا, حد کے باپ, اور یہ ہے بے حد کا باپ. تو سومناتھ کا مندر بھی یہاں ہے. مندر مانا یادگار مندر. منشی یہ بھول گئے ہیں कि भारत बड़ा तीर्थ है। तीर्थ माना तीर माना किनारा, अर्था माने स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान यानी पार उतारने वाला स्थान। और दुनिया में दूसरे दूसरे जो तीर्थ हैं, मुसलमानों के तीर्थ हैं, मक्का मदीना, क्रिश्चियंस के तीर्थ हैं, पैलेस्टाइन वगैरह, लेकिन वो पार लगाने वाले नहीं हैं। और भारत तीर्थ बड़ा तीर्थ है, सारी दुनिया को पार लगाने वाला है स्थान। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है भारत। सबको भारत में आकर के शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबको करना चाहिए क्या? हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को भारत में आकर के शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। कौन से? जड़ मंदिर में, चैतन्य मंदिर में आकर के नमन करना चाहिए स्वेच्छा से। लेकिन हिस्ट्री में हुआ क्या? दूसरे धर्म वाले आतताइयों ने आकर के क्या किया? भारत के जो मंदिर हैं, खास करके शिव के मंदिर, देवियों के मंदिर को हाथ नहीं लगाया मुसलमानों ने, लेकिन शिव के मंदिर को तोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं जो सारी मनुष्य शक्ति को सुख शांति देने वाला है। 15/4/88 का प्रातः क्लास 16 नंबर के रजिस्टर में 140 के दूसरे पेज का मध्य आदि तो बताया कि सबको भारत में आकर के शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। चाहिए का मतलब नमन कर नहीं रहे हैं, माथा झुकाए नहीं रहे हैं। अच्छा, 500 करोड़ को बाप पढ़ाए रहे हैं क्या? ये मुरली किसके लिए चलाई गई है? पहले किसके लिए चलाई गई? पहले तो जो सामने बैठने वाले बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को बाबा अपनी बुद्धि में इमर्ज करके बोलता है उन बच्चों के लिए, अथवा जो सन्मुख बैठे हैं उन बच्चों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे बच्चे हैं जो भारत को नमन नहीं करना चाहते, भारत को माथा टेकना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। बाबा तो कहते हैं कि सबको झुकना चाहिए। किसको झुकना चाहिए है? भारत को झुकना चाहिए, जहां भारत में बाप आकर के जन्म लेते हैं। और भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। अवैतवाणी में क्या बोला? दिल्ली की धरणी को सबको माथा टेकना पड़ेगा, सब दिल्ली को फॉलो करेंगे। लेकिन विदेशी लोग क्या करते हैं? विदेशियों ने आकर के दिल्ली में खून खराबा किया, यहाँ के सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया, सत्र सत्र आक्रमण कर दिए। अब बाप आए हैं, वो समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो बाहर के विदेशियों को पहले समझाते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त और बीज रूप में विदेशी आत्माएं हैं उनको पहले समझाते हैं। पहले तो अंदर का सुधार, घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। अगर नहीं भी मानेंगे तो भगवान तो सबसे मना ही लेगा। भगवान से बड़ा तो ज्योतिषी कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बता रहे हैं कि सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे टूट जावेंगे और एक ही बड़ा मंदिर अंत में अब रह जाएगा। अब वो टाइम आ गया, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री जी जो बाबा बेहद का सुख देने वाला है, सुख मिलता है बाप से, तो जो बाप की मत को मानेंगे उनको सुख मिलेगा, बेहद का सुख मिलेगा। और बाप की मत को न मान करके मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे तो उनको उतना बेहद का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य है हद के और परमात्मा बाप है बेहद का। हद के मनुष्यों से हद का हद की प्राप्ति होगी और बेहद परमात्मा से बेहद की प्राप्ति होगी। जैसे उसे संस्कृति गीता में भी लिखा हुआ है, जो भूतों को पूजने वाले हैं वो भूतों से प्राप्ति करते हैं और भूतियों में जन्म लेते हैं जाकर। जो देवताओं से प्राप्ति करने वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और देवियों में जाकर जन्म लेते हैं। और जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाला है वो भगवान से प्राप्ति करता है। भगवान से ऊंचा तो कोई और होता नहीं। भगवान से प्राप्ति करने वाले जरूर भगवान भगवती का टाइटल पाएंगे। तो सुख मिलता है बेहद के बाप से, बेहद का। अब विनाश सामने खड़ा है, इस महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा सुखधाम शांति धाम के गेट खुलने वाले। क्या कहा? कौन सी लड़ाई बताई? महाभारी महाभारत लड़ाई, भारी, हल्की फुल्की लड़ाई नहीं है। हिस्ट्री में जो लड़ाइयां होती आई वो तो फिर भी छोटी मोटी लड़ाइयां हुई, हद की लड़ाइयां हुई है। लेकिन अब हमारे सामने खड़ा हुआ है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। और ये शुरू कहाँ से होता है? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो यज्ञ कुंड का भी सेंट्रल प्लेस कौन सा होगा? यज्ञ कुंड का भी सेंटर कहाँ होगा? यज्ञ जब रचा जाता है तो कुंड खोदा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ प्रसिद्ध है, जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो गई। तो पहले पहले यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? अव्यक्त वाणी में बोला ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। ऐसे तो माँ बाप की लड़ाई के बीच में ब्राह्मण बच्चों को बोलना नहीं चाहिए क्या? कि बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप खुद अपना उलझा सुन ले। लेकिन कोई आसुरी बच्चे थे जिन्होंने माँ बाप की लड़ाई को और आहुति दे दी कि लड़ो मरो जल्दी से, हमको बादशाह ही मिल जाए। मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने भी ऐसे ही किया, बाप को मार दिया, खुद राजगद्दी पर बैठ गए। तो यहाँ शूटिंग हो रही है। ये फाउंडेशन तो यज्ञ के आदि से ही लगा हुआ है। रावण संप्रदाय के जो बच्चे होते हैं वो माता पिता में फिक्शन डलवाते हैं। रावण ने क्या किया? राम को, सीता को राम से जुदाई जुदाई दे दी, फिक्शन डलवाई दिया, जुदा कर दिया। तो यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता और ब्रह्मा को, राम और कृष्ण की आत्माओं को उस आसुरी बच्चों ने जुदा करवाई दिया। बाप दादा अव्यक्त वाणी में बोलते हैं कि तुम बच्चे बाप दादा को अलग करेंगे और वो फिर एक हो जाएंगे। ये ड्रामा में नुदा हुआ है। रामकृष्ण की आत्मा हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं। ये हीरो हीरोइन का बेहद का ड्रामा है। तो इसमें बताया कि ये महावारी महाभारत लड़ाई अगर नहीं होगी तो सुखधाम और शांति धाम का गेट नहीं खुलेगा। ये लूब है, तुम डीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा की और फॉरन के फॉरेनर्स के राज्य को भगा दिया, परंतु अब तो बहुत दुख हो गया है। ये बात कहां की हुई? ये भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग होती है। यहाँ गांधी भी हैं, तो नेहरू भी हैं, मुरारजी देसाई भी हैं, सब हैं। क्योंकि जैसे नाम वैसे काम। नेहरू नाम पड़ा है तो जरूर इसलिए है कि रूह होगी। घरवाली का नाम कमला नेहरू, रहने वाली कहाँ की है? कमला नेहरू कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। नेहरू थे इलाहाबाद के, अल्लाहाबाद। कौन सी नगरी के? अल्लाहाबाद। और ऐसे ही गांधी जी, नाम था कर्मचंद गांधी, वो भी चंद थे और ये भी चंद, चंद्रमा ना, चंद्रमा। कर्म माने कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाला चंद्रमा। हम बच्चों को किसको फॉलो करना है कर्मों में? हैं? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए। तो कर्मचंद गांधी, जिसको किसी गॉडसे ने गोली मार दी। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य स्थापन कर न सके। कर सके? नहीं कर सके। ब्राह्मणों की दुनिया में भी गांधी जी राम राज्य स्थापन नहीं कर सके। कहते थे पतित पावन सीताराम और हाथ में गीता उठाते थे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा ने ऐसे ही किया। यज्ञ के आदि में जो आत्माएं थी, उन आत्माओं की शुरुआत में ब्रह्मा बाबा को भी मान्यता थी। मान्यता नहीं होती तो उनके डायरेक्शन पर शुरुआत में नहीं चलते। अच्छे अच्छे बच्चे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। इसका मतलब मान्यता तो थी, लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने फ्रिक्शन डलवाई दिया तो वो मुख की बात मुख में ही रह गई। मुख से कहते थे पतित पावन सीताराम, बाद में वो बात उड़ गई है। फॉरेनर्स को भगाने वाले गांधी जी, फॉरेनर्स माने विदेशी, विधर्मी। तो यज्ञ के आदि में भी सिंध हैदराबाद में जो सारा यज्ञ शुरू हुआ था, उसमें बड़े बड़े विदेशी थे। और एडवांस के आदि में भी बड़ी बड़ी विदेशी धर्मों की बीज रूप आत्माएं, वही निमित्त बनी परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष बनने की, करने की। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो विदेशी जब प्रत्यक्ष करेंगे तो उन्हीं का बोलबाला हो जाता है। एडवांस पार्टी में भी दिल्ली के अंदर उन विदेशी धर्मों के बीज रूप आत्माएं वो अपना शासन जमाए लेती हैं। दिल्ली राजधानी जो पांडव वर्ग की भारतवासी आत्माएं हैं, उनको दिल्ली में तीन पैर पृथ्वी का स्थान नहीं मिलता। तो विदेशियों को पौवारा हो जाती है। तो ऐसे विदेशियों को गांधी जी ने बगाए दिया यज्ञ के अंदर भी। जो विदेशी आत्माएं थी उनको भगाया। اور کون وہ برا جو مل گیا؟ بیٹیوں کو تو بھگایا لیکن راج بھارت واسیوں کو تو ملا, لیکن بھارت واسیوں میں بھی دو کیڑے, کورو اور پانڈو. تو پانڈووں کو تو راج نہیں ملا, راج ملا کوروں کو. اس لیے بابا نے بولا جیسے گاندھی کی مت پر سب نے تن من دھن سے سیوا کر کے فارن کے راج کو بھگا دیا, پرنتو اب تو بہت دکھ ہو گیا. فارنرز کے راج میں زیادہ سکھ تھا کہ آج کے راج میں زیادہ سکھ ہے؟ جو ودیشی تھے ان کے راج میں پھر بھی زیادہ سکھ تھا. یہ کورو گورنمنٹ آئی پرجا کے اوپر, پرجا کا راج, اس میں تو دکھ کی بھرمار ہو گئی. اب ان راون پر جیت پانی, چاہے ودیشی ہو اور چاہے کورو ہو, کورو کانگریسی کوؤں کی طرح شورگل بہت مچاتے ہیں لیکن دھندا ان کا صرف گند کھانا ہے, دوسرا دھندا نہیں ہے. تو ایسے کوروں کا جو راج ہے وہ دکھ دینے والا ہے, نرک بنانے والا ہے. اب باپ کہتے ہیں کہ تم بچوں کو ان راون پر جیت پانی, چاہے کورو کانگریسی آری سماجی موہی مرتے دیانند کے کل کے ہو, کیونکہ بھارت میں ہوتا ہے موہ. آری سماجی کورو کانگریسی یہ بھی موہ سے بھرے پورے ہیں. کس بات کا موہ ہے ان کو؟ ان کو موہ ہے اپنی پرجا بڑھانے کا. جو ستیوگ کا آخری نارائن ہوگا, آخری دھرم والا, وہ آری سماجی ہوگا. وہ صرف پرجا بناتا ہے, اپنا وارسدار کوئی تیار نہیں کرتا, اس لیے تریتا میں اس کی راجگدی نہیں چلتی. لکشمی نارائن کا راج ہی خلاص ہو جاتا. تو پرجا کے اوپر پرجا کا راج جو بابا نے بے قاعدے راج بتایا, اس کو باپ آ کر کے خلاص کر دیتے. اور یہی نہیں, جو ودیشی ہیں کامی کروی لوبھی موہی اہنکاری پانچوں وکار, کامی اسلامی, کروی کرسچنس, لوبھی مسلم, جنہوں نے بھارت پہ آکرمن کر کے خوب لوٹا, اور اہنکاری رشینس جو ابھی بھی بھارت کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, تو ان سب کے اوپر باپ آ کر کے جیت پہناتے ہیں. آدھا کل پر راون راجیہ اور آدھا کل پر رام راجیہ چلتا ہے. باپ سے لے کر دیہ ابھیمان میں آنے سے ہم باپ کو بھول جاتے ہیں. تو باپ یاد کب آئے گا؟ جب آتما ابھیمانی بنے تو باپ یاد آئے گا, دیہ ابھیمان میں آنے سے باپ بھول جاتا ہے. تو باپ کو نہ جاننے کے کارن ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. براہمنوں کی دنیا میں بھی اگر آپس میں براہمن لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کو باپ کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ باپ کی پہچان نہیں ہوئی. اگر باپ کی پہچان ہو تو خود لڑائی جھگڑا کرنے کی درکار نہیں, کیونکہ جانتے ہیں دھرم راج باپ آیا ہوا ہے, ایک ایک کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو پھر ہم کیوں لڑائی لڑیں؟ لڑائی کب لڑتے ہیں؟ جبکہ نشچے ٹوٹا ہوا ہے. تو بھارت واسی جب دکھی ہو جاتے ہیں تب ہی باپ آتے ہیں. باپ آتے ہیں بچوں کی قسمت جگانے. اور گیت کیا کہہ رہا ہوں؟ تقدیر جگا کر آئی ہوں. کہاں آئی ہوں؟ باپ کے سامنے. اس لیے ان شاستروں میں بھی لکھ دیا, سنم کو اوئے جیو موئے جب اور جنم پوتی ادناس ہیں تب ہی. جب کوئی جیو آتما میرے سنمکھ آتی ہے, مانا پرماتما کے سنمکھ آتی ہے, تو اس سمے سمجھو اس کے انیک جنموں کے پاپ ناس ہو گئے, اس کی تقدیر جگ گئی. جب تک تقدیر جگی نہیں ہے تب تک باپ کے سنمکھ ہو نہیں سکتے. ब्राह्मणों की दुनिया में भी कुछ दिन हुई आत्माएं हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे विकर्म किए हैं ब्रह्मा बाप की गोद में रह करके कि 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझ आकर आया और उनकी बुद्धि पथराई गई। विपरीत बुद्धि बिना शक्ति स्टेज पर पहुंच गए। वो आत्माएं भी जब तक बाप के सन्मुख नहीं होंगी तब तक वो अपना वर्षा परमात्मा बाप से प्राप्त नहीं कर सकेगी। हाँ, जो सन्मुख होंगे और जितना जल्दी सन्मुख होंगे उतना ही उनके पाप नाश हो जाते, क्योंकि ज्ञान बाप से ही मिलता है, बाकी सब मनुष्यों से अज्ञान मिलता है। तो ज्ञान जब मिलना शुरू होता है बाप से उस समय हर आत्मा की सत्व प्रधान स्टेज होती है। ज्ञान भी सत्व रजो तमो 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो ब्राह्मण आत्माएं भी शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। शुरुआत में जब परमात्मा बाप से बच्चे मिलते हैं तो सत्व प्रधान स्टेज होती है। इसलिए मुरली ने कहा कि आत्मा की आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या ये आत्मा रूपी सुई है जो बिंदु को याद करते करते सूक्ष्म बन गई, जब उसकी सारी कट उतर जाती है तब परमात्मा बाप से बच्चे आकर के मिलते हैं प्रैक्टिकल में, और जब मिलते हैं तो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं, फिर कोई दूसरा मीडिया बीच में नहीं, बाप ही पढ़ाते हैं। तो बताया, बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने, और बच्चे बाप के सन्मुख आते ही हैं किस्मत जगाकर। कोई पूर्व जन्मों का सुकृत है, कोई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है बाप के साथ, वो उनको बाप के सन्मुख ले आता है। क्योंकि बाप भी दो हैं बेहद के, एक आत्मा का बाप वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सुप्रीम सोल, और एक है मनुष्य की सृष्टि का बाप प्रजापिता, सब मनुष्य मात्र का बाप एडम या आदम। तो एडम या आदम के तो 84 जन्म होते हैं ना, तो 84 जन्मों के हिसाब किताब भी बच्चों के साथ है, नंबर वार पुरुषा समझा। तो जिन बच्चों ने भी किसी भी कोई भी जन्म में कोई ऐसा सुकृत कर्म किया है बाप के साथ, कोई न कोई ऐसा स्नेह का कार्य किया है, तो वो ही सुकृत उन बच्चों को बाप के सन्मुख खींच लेता है। इसलिए कहा तकदीर जगा कर आई, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। क्या अंधश्रद्धा की यहाँ कोई बात नहीं है, जो भी बातें बताई जाती हैं उनका सबका गुह्य राज है, कोई न कोई कारण है तब वो बात पैदा होती है। इसलिए हर बात करीने से समझाई जाती है। भक्ति में है सब अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा माना अंधी श्रद्धा, तुम्हारी समझ में आए या ना आए जो हम कहें तो मानो। तो भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा और ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये अच्छी चीज नहीं है। बाप आकर के अंधश्रद्धा तोड़वाते हैं ज्ञान दे करके, समझ दे करके। परमपिता परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी कोई बिल्कुल नहीं जान सकते। इनकी बायोग्राफी कौन बनाता है बताता है? परमात्मा बाप ही आकर के इनकी बायोग्राफी बताते हैं। परमात्मा की परमात्मा खुद भी अपनी बायोग्राफी अपने आप बताता है, कोई और नहीं बता सकता। परमात्मा का परिचय परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। परमात्मा बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। वो परमात्मा पार्टी की ये विशेषता है कि उसका परिचय कोई दे नहीं सकता। और ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण इनकी भी बायोग्राफी कोई नहीं जानता, वो भी परमात्मा बाप ही आकर के देते। क्योंकि वो नालिश फुल है, कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। शत्रुघ्न लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम सीता का राज्य था, फिर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, ये भी एक मुहावरा है। शत्रुघ्न में शेर के साथ बकरी होगी क्या? शेर तो देखने में ही कितना अच्छा लगता है और बकरी में तो गंध छूटता है, तो वहां बकरियां नहीं होती, कहां? स्वर्ग में। जितने भी गंदे जीवड़े हैं वो वहां नहीं होंगे, वहां सब सुंदर सुखदाई जीवड़े होंगे, पशु पक्षी सब सुखदाई होंगे, कीड़े मकोड़े तो वहां होंगे ही नहीं। तो ये गायन कहाँ का है फिर? शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, ये भी संगम युग का गायन है। संगम युग में मैं करने वाली जो बकरियां हैं कि हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, हम ही नई दुनिया बनाएंगे, हम ही माला बनाएंगे, ऐसे बकरे बकरियों को किसके साथ बैठ करके जल पीना पड़ता है? शेर शेरनियों के साथ बैठ करके जल पीना पड़े। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये 21वें जन्म के स्वर्ग की सुख की बात है। उस समय धर्म का उपकार था, राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, जिए नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार है। तो धर्म का उपकार और कभी होता ही नहीं सिवाय राम राज्य के। अब तो घर घर में दुख है, बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शिव शक्ति सेना हो, भारत की माताएं किसकी शक्तियां हो? शिव की शक्तियां हो, कोई मनुष्य की शक्तियां अब नहीं हो। ये मंदिर तुम्हारा है। कौन सा मंदिर? अब तुम राजयोग में बैठे हो। कौन सा मंदिर की तरफ इशारा किया? दिलवाड़ा मंदिर। ये तुम्हारा यादगार है, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में क्या यादगार है? हाँ, वहां कोठरियां बनी हुई है 54। उन कोठरियों में माने उन घर गृहस्थ में पूरे परिवार के परिवार बैठे हुए, माँ बाप और बच्चे, लेकिन सबका बुद्धियोग किससे जुटा हुआ है? उन सबका बुद्धियोग आपस में नहीं जुटा हुआ है, सबका बुद्धियोग एक बाप से जुटा हुआ है, सबके संबंध एक बाप से जुटे हुए हैं। तो ये तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। उसमें जो योगयुक्त अवस्था दिखाई गई है स्त्री पुरुष और बच्चों की, उसमें राज भरा हुआ है। देखने में तो ये आ रहे हैं कि ये देहधारी आपस में इकट्ठे हुए पड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो सब बुद्धियोग से न्यारे हैं। उनका संबंध है देह और देह के संबंधों से टूटा हुआ है और एक बाप से जुड़ा हुआ है, एक बाप से ही वो सर्व संबंध निभाने वाले हैं। तो ये राजयोग की पढ़ाई है, इसमें ये राग भरा हुआ है। सबको गॉडफादर पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बड़ों को भी पढ़ाते हैं। बाकी आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है, क्या वंदना करते हैं? वंदे मातरम, वंदे पितरम क्यों नहीं कहते है? पवित्रता की वंदना की जाती है। इसका मतलब है कि पिता ने पवित्रता का पहला सहयोग नहीं दिया, पहला कदम नहीं बढ़ाया, आखिरी में पहला कदम फिर भी किसको बढ़ाना पड़ता है? कन्या और माताओं को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। इसलिए बताया माताओं द्वारा बाप आकर सबकी किस्मत जगाते हैं। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ, बड़े बड़े घरों की कन्याएं माताएं आई यज्ञ में, और जब बड़े बड़े घरों की कन्याएं माताएं आई तो भाई लोग भी आए, बड़े बड़े घरानों वाले, लेकिन जितने भाई थे वो सब टूट गए और कन्याएं माताएं बाप की बन गई। काराची में आकर के एक संगठन, स्वर्गीय संगठन का नमूना तैयार हो गया। तो जो आदि में हुआ तो अंत में होगा। पुरुष अपने रुआब को नहीं छोड़ेंगे, पुरुष अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे, तो कदम किसको आगे बढ़ाना पड़े, शक्तियों को ही आगे बढ़ना पड़े। जब उनके अंदर ये एहसास होगा हम शिव की शक्ति हैं, तो उन शिव की शक्तियों को कोई रोक नहीं सकेगा। पवित्र है एक बाप का बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो बताया बाप माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चढ़ गए। स्वर्ग में ऊंची स्टेज में चढ़ने के लिए भी आधार किसका लिया, गाय का। तो गऊ कौन है, भारत की कन्याएं माताएं ही गऊ है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर ये पाठ बजाया है कि जिस खूंटे से उनको बांध दिया गया जीवन भर, उसी खूंटे से गऊ माता की तरह बंद करती रही। विदेश की कन्याओं माताओं में ये बात नहीं होती। तो परमपिता परमात्मा की वंदना की जाती है, देवताओं की भी वंदना करते हैं, और तुम माताओं की भी वंदना करते हैं, पति तो मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तो वंदना का आधार क्या, प्योरिटी। तो माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम, क्या कहा, पवित्र रहने वाली आ माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम, शिव की शक्तियों के लिए कहा जाता है वंदे मातरम, नरक का दरवाजा खोलने वाली माताओं के लिए वंदे मातरम नहीं कहा जाता। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर कब सुख नहीं मिल सकता, सुख की दुनिया तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक माताएं अपने शिव शक्ति स्वरूप को पहचानती नहीं। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे, औरों का संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वो ही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। नहीं तो विपरीत बुद्धि विनश्यंति हो जाए। सदगुरु संगत ठहर न पावे, माना जो आत्मा है जो ब्राह्मण बच्चे सदगुरु बाप का बन करके भी